भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागतायस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की
जय।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी की
जय।
आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की
जय। देवले परम पूज्य स्वामी श्री क्षमा सागर जी महाराज की
जय।
परम पूज्य स्वामी श्री भव्य सागर जी महाराज की
जय।
श्री संघ की
जय।
हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से इस बात के लिए इकट्ठे होते हैं कि विचार कर सकें हमारा जो जीवन शेष रहा है उसे हम कैसे अच्छा बनाएं। हमने पिछले दिनों ये समझ लिया है कि हमारे उत्थान पतन की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। यहां जो जैसे और जितने हम हैं उस सब के लिए कोई और नहीं, हम खुद जिम्मेदार हैं। हमने यहां जो भी पाया है या हम यहां जो खो देते हैं वो भी हम अपने पुरुषार्थहीनता या ज्ञानता से खोते हैं और अपने पुरुषार्थ और ज्ञान से हासिल करते हैं। इतना सब होने के बाद हमारे अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार तो हमारे पास है, पर देख लें कि जीवन को अच्छा बनाने का कोई उपाय हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये तो तय कर लिया हमने कि जीवन को अच्छा बनाना है, लेकिन कैसे बनाए, व्हाट इज द प्रोसीजर, क्या प्रक्रिया हो जिससे कि मेरा जीवन बेहतर हो। कल मैंने जैसा जिया था उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, आज मैं उससे भी ठीक ढंग से जीना चाहता हूं। ये जो एक लगन हमारे भीतर अगर उत्पन्न हो जाए तो वो ही हमें उपाय भी बताएगी कि क्या उपाय हो सकता है। मेरे ख्याल से कोई इतना ज्ञानी नहीं है जो अपना भला और बुरा किसमें है ये ना जानता, सब जानते हैं कि क्या करने से मेरा जीवन अच्छा बनता है और किस तरह मैं अपने जीवन को बुरा बना लेता हूं। लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी विचार करना तो जरूरी है, पता नहीं वो विचार हमारे जीवन में आचरण में किसी भी क्षण उतर जाए। हम आज इस बात पे विचार करें कि यहां जो सुख और शांति हम पाते हैं वो सुख और शांति क्या सच्ची है या कि मुझे किसी सुख और शांति की खोज जो कि शाश्वत है कर लेनी चाहिए। मेरा जीवन उस सुख और शांति को पाकर के ही अच्छा बन सकता है, या कि मेरा जीवन मैं इसलिए अच्छा बनाना चाहता हूं कि मुझे वो सुख और शांति मिले जो कि शाश्वत है। बहुत पुरानी घटना है, कलकत्ते के अंदर रविन्द्रनाथ टैगोर अपने कमरे में बैठे कविताएं लिख रहे थे रात 12 बजे, नींद उनको घेरने लगी तो एक छोटी सी कैंडल जला करके वो कविताएं लिख रहे थे। उन्होंने वो कैंडल बुझा दी और सोने की तैयारी करने लगे। इतने में उन्होंने देखा कि अरे मैं तो सोचता था कि इस कैंडल के उजाले में मैं कविताएं लिख रहा हूं और कोई रोशनी यहां है ही नहीं, इस कैंडल की ही रोशनी है। पर जैसे ही कैंडल बुझाई वैसे ही उन्होंने देखा कि खुले हुए खिड़की और दरवाजे से ढेर सारी चांदनी कमरे के अंदर फैल गई। उस छोटी सी जलती कैंडल की वजह से वो चांदनी पहले भी आ रही थी पर उसका एहसास नहीं होता। वे लिखते हैं कि मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि मेरे जीवन में सुख और शांति निरंतर बरस रही है, लेकिन मैं इन छोटे छोटे से बाहर के सुखों में सुख मानकर शांति मानकर उलझा हुआ हूं और अपने उस अंतरंग सुख को मिस कर रहा हूं, अपने उस अंतरंग सुख को भूला हुआ। एक छोटी सी घटना उनके जीवन को परिवर्तित कर सकती है। और हमारे अपने जीवन में हम कितनी बार सुख और शांति के उपाय करते हैं और अंततः उस सुख और शांति को नहीं पा पाते हैं, असफल होते हैं। इसके बाद भी हमारे मन में ये बात नहीं आती है कि मैं किस तरह करूं जिससे कि मुझे सच्चा सुख और सच्ची शांति मिले। थोड़ा सा विचार कर लें किस तरह का सुख और किस तरह की शांति हम लोग पाते हैं, और उससे भी आगे जाकर के क्या हम किसी और सुख और शांति को पा सकते हैं। एक शांति तो तब मिलती है जबकि शरीर में कोई व्याधि हो जाए और उसका हम इलाज करते हैं तो पीड़ा थोड़ी कम हो जाती है, तब बड़ी शांति मालूम पड़ती है। 105 बुखार हो और किसी ट्रीटमेंट से वो अगर 100 रह जाए और कोई पूछे कि कैसा है अब, शांति है। अभी 100 बुखार है, उतरा नहीं है पूरी तरह से, पर वो जो 105 था उससे कम होने की वजह से थोड़ा सा दुख का प्रतिकार होता है तो सुख महसूस होता है, थोड़ा सा अशांति का कारण दूर होता है तो शांति आती मालूम पड़ती है। सुबह भोजन करते हैं, बड़ी भूख लगी थी, पूरा भोजन होने के बाद बड़ी शांति महसूस होती है कि बढ़िया है, तो क्या ये शांति कल तक चलेगी? ना चल पाएगी, शाम को फिर चाहिए, फिर दुख घेरेगा, फिर अशांति घेरेगी। लेकिन हम सब जानते हुए भी इसी सुख को सब कुछ मान लेते हैं, इसी शांति को सब कुछ मान लेते हैं, अपने थोड़े से भौतिक सुखों की पूर्ति में शांति मानने वाले लोगों की तादाद बहुत है। हम सब शायद उसी लाइन में खड़े हुए लोग हैं जो छोटी छोटी सी आवश्यकताओं की पूर्ति करके और शांति महसूस कर लेते हैं। कल ठीक मकान नहीं था, आज मैंने मकान दुरुस्त कर लिया है और अब मेरा मकान बहुत अच्छा है, मुझे थोड़ी शांति मिल गई। कल मेरे पास ठीक पहनने के कपड़े नहीं थे, आज मैं बहुत शान से और अच्छे कपड़े पहन के बाहर निकल सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी शांति मिल गई। कल मेरे पास खाने पीने को बहुत अच्छी सामग्री नहीं थी, आज मेरे साथ खाने पीने की बहुत अच्छी सामग्री है, ऐसा लगता जैसे मुझे सुख मिल गया हो, जैसे मुझे शांति मिल गई। लेकिन क्या ये शांति और सुख पाने का भ्रम नहीं है? लेकिन ऐसा कहाँ समझ में आता है, ऐसा कहाँ लगता है? किसको लगता मुझे बताओ, मुझे भी तो जब भूख लगती है तो आहार के लिए निकल जाता हूं, फिर लगता है कि बड़ी शांति मिल गई, आहार हो गया, अपना धर्म ध्यान आसानी से कर सकूंगा। बताइए फिर इस शांति से इनकार कैसे किया जा सकता है, इस सुख से इनकार कैसे किया जा सकता है। ये सुख तो है, ये शांति तो है, मैं कहां कह रहा हूं कि ये सुख नहीं है और ये शांति नहीं है, लेकिन ये शाश्वत नहीं है, इतना तो मैं कह सकता हूं, इतना तो आप भी कह सकते हैं। ये बहुत क्षणिक है, मुझे इस तरह से शांति नहीं चाहिए जिसके पीछे फिर एक नई अशांति हो, मुझे इस तरह का सुख नहीं चाहिए जिसके पीछे पीछे दुख चला आता हो। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो और यहां से चलें उम्र भर के लिए। यहां तो हम सोचते हैं कि किसी पेड़ के नीचे थोड़ी छाया मिलेगी, थोड़ी शांति मिलेगी, खड़े हो जाते हैं, लेकिन यहां तो जहां जहां सुख खोजते हैं वहीं से दुख निकलता, जहां जहां शांति का उपाय करते हैं वहीं से अशांति मिलती है। चलो और यहां से चले उम्र भर के लिए, लेकिन ऐसा तय कहां कर पाते हैं कि छोड़ दें सबको। बेभौतिक सुख जब तक हमें शांति और सुख का एहसास देते रहेंगे, जब तक उनकी क्षणिकता का हमें बोध नहीं होगा, तब तक हम उन्हीं में शांति मान करके और अपना संसार ही बढ़ाते रहेंगे। हम अपने जीवन को तब तो अच्छा नहीं बना सकते, तब तो हम उस शांति की खोज पर नहीं निकल सकते हैं जो कि वास्तविक है, जो कि शाश्वत है। मैं आपको वास्तविक शांति के बारे में जो कह रहा हूं तो वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक ऐसा सुख है, एक ऐसी शांति जिसके पास, जिसके पीछे कोई दुख और अशांति नहीं होती, बस वही है समझना, कसौटी है ये। जब जब मैं कोई सुख की सामग्री इकट्ठी करूं और उसमें सुख मानूं सच्चा और उसके बाद कोई दुख ना आए तो समझना कि वो सच्चा है, और अगर उसके पीछे कोई दुख आए तो समझना वो सच्चा नहीं, बस इतना, और उसको दूर हटा देना। उसमें कम से कम इतना करना कि सुख नहीं मानना, उसमें शांति नहीं मानना। ये पहले प्रकार की शांति हम सबके पास है, हमने शायद इसी को भ्रम बस शाश्वत शांति मान ली। दूसरे प्रकार की और शांति है, वो भी हम दिन भर में पाते हैं पर बहुत कम अवसर है उसके। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की पूर्ति में होने वाली शांति तो सुबह से शाम तक, मुझे तो बहुत गौर से देखता हूं तो मुझे लगता है कि हम सब अपने शरीर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, अपने इंद्रियों के विषयों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, पूरे 24 घंटा उसी में निकल जाते हैं। कौन से कपड़े पहन के बाहर निकलना है और वापस आकर के उन्हें कितने संभाल के रखना, और आज सुबह के खाने में क्या था और शाम के खाने में क्या था, और कल के लिए पैसे हैं कि नहीं है, और दुकान कैसी चल रही, सारी चीजें जो है वो किसके इर्द गिर्द हैं, शरीर के भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। तब फिर हम कौन सी सच्ची शांति की बात करने बैठे हुए हैं, हमें तो इसी में शांति लग रही है। अगर इसमें नहीं लगती होती तो हम काहे को इतनी अपनी सांसें बेकार करते इस सब सामग्री को जुटाने में। हमसे ज्यादा गैर बुद्धिमान और कौन होगा अगर हम ये सब कुछ कर रहे हैं और ये भी मान रहे हैं कि नहीं इसमें सच्ची शांति नहीं है। तब फिर हमें कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस करनी चाहिए, लेकिन बहुत आसान नहीं है भैया। जितनी आसानी से मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी आसानी से आप सुन रहे हैं, जितनी आसानी से आप समझ रहे हैं, उतनी आसानी से कर पाएंगे ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन उस पहली वाली शांति को स्थगित करके और आगे दूसरी शांति का उपाय खोजता है। उसके अवसर भी जीवन में बहुत आते हैं लेकिन बहुत रेयर हैं। दूसरे प्रकार की शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर लेते हैं। एक बेटी है, उसका ब्याह करना है, खूब दौड़ धूप कर रहे हैं, बामुश्किल ब्याह हो गया है और अभी अभी उसको विदा कर दिया है और चुपचाप टिके हुए बैठे हैं आराम कुर्सी पर, और कोई आके पूछता है कि क्यों कैसा है, बहुत शांति है। मतलब अभी तक बिटिया थी तो अशांति थी क्या? नहीं, अशांति तो नहीं थी, पर उसका दायित्व मेरे ऊपर था, उसे ठीक ठीक घर में ब्याह करके मैं उस दायित्व से मुक्त हो गया हूं, इसलिए शांति महसूस कर रहा हूं। जब जब किसी के एग्जाम टाइम आता है तब तब वो पढ़ाई करने में लग जाता है, और जिस दिन लास्ट पेपर होता है फिर उससे पूछो कि कैसा लगता है, कहता बहुत शांति। मेरा एक दायित्व था स्टूडेंट के नाते मुझे ठीक से परीक्षा देनी चाहिए, मैंने वो पूरा कर दिया। ऐसे कितने सारे दायित्व इस संसार के हम पूरे करते हैं और शांति पाते हैं, लेकिन क्या इसके बाद हमारी यह शांति हमेशा के लिए मिट जाती है? क्या इसके बाद भी हम उस शाश्वत सुख को पा पाते हैं? नहीं पा पाते। फिर भी एक अशांति, एक असंतोष मैंने देखा है लोगों को। मैं सोचता था कि जिन जो अभावग्रस्त हैं वे ही दुखी हैं, नहीं, जिनके पास सब चीजों का सद्भाव है वे भी उतने ही दुखी हैं। जो कार ट्रैक में चलता है, बैलगाड़ी में चलता है, वो भी उतने ही दुखी हो, और जो जेट में चल रहा है वो भी उतने ही दुखी है। कहीं कोई थोड़ा सा डिग्रीज का फर्क हो सकता है दुख की डिग्रीज का, बाकी दुख की क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। क्वांटिटी डिफरेंस हो सकता है, क्वालिटेटिव कोई डिफरेंस नहीं। किसी का दुख थोड़ा सुपीरियर है, ऐसा कह लें, आप अनुमति दें तो ऐसा भी कह सकता हूं, किसी का दुख थोड़ा सुपीरियर, किसी का दुख थोड़ा इंफीरियर, लेकिन दुख सबका है। इतने सब सुख सुविधा के साधन और इतने कर्तव्यों की पूर्ति कर लेने के बाद भी व्यक्ति पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साधा। सारा पुण्य के उदय में पांच बेटियां हैं, पांचों का विवाह करने के लिए संपत्ति है, विवाह कर दिया है, जो जो लाइबिलिटीज थी, जो जो ड्यूटीज थी अपने जीवन की, वो सब पूरी करनी, इसके बाद भी आदमी को तलाश है शांति की और सुख की। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि दायित्व से मिलने वाली शांति, दायित्व की पूर्ति से मिलने वाली शांति भी फर्स्ट एंड नहीं है, शाश्वत नहीं है। मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे शांति के आगे और कोई शांति का उपाय करना चाहिए, तीसरे प्रकार की शांति भी है। आज बस उसी तीसरे प्रकार की शांति की चर्चा करके हम सब रुक जाएंगे और एक बार घर जाकर के देखेंगे कि पहले प्रकार की शांति में कितना वक्त गुजारते हैं, दूसरे प्रकार की शांति के अवसर ढूंढते हैं नहीं, और तीसरे प्रकार की शांति के अवसर मेरे जीवन में कभी आए हैं या नहीं आए हैं। चौथे प्रकार की जो शाश्वत शांति है, फिर कभी बैठेंगे और उस पर बात करेंगे। आज तो तीसरे प्रकार की शांति, रास्ते से चले जा रहे थे और अचानक देखा कि एक व्यक्ति टकरा गया है किसी गाड़ी से और गिर गया है। अननोन पर्सन है, मैं नहीं जानता हूं कि कौन है, एकदम अपरिचित है। मैं अपने सौ काम छोड़ करके, चूंकि मेरे अंदर संस्कार है कि ऐसा करने से मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, ऐसे अवसर आते बहुत कम है और ऐसा मन बने ऐसा भी बहुत कम है, और फौरन में जाकर के उस अपरिचित को उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाता हूं और हॉस्पिटलाइज कर देता हूं और डॉक्टर से कह देता हूं कि डोंट वरी, जो भी पेमेंट होगा मैं करूंगा। ये आपके कौन है? नोबडी, कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पेमेंट पूरा करूंगा, कोई भी कमी मत रखना इनके इलाज में। और एक हफ्ते तक इलाज चलता है और वो भले चंगे हो जाते हैं। जिस दिन उस व्यक्ति को भले चंगे हम देखते हैं और अब उसके घर भेजते हैं, उस दिन कैसा लगता है? कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है, कभी अनुभव किया इस चीज का? मेरे ख्याल से तो जो हमारे अपने हैं उनको जरा सी चोट लग जाए तो जरूर हम भागे भागे डॉक्टर के यहां पड़ते हैं, लेकिन जिनको हम अपना नहीं मानते उनके लिए तो हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। हमारा जहां स्वार्थ है वहां हमारी संवेदनशीलता है, वहां हम इस संवेदनशीलता से मिलने वाली शांति को गेन करते हैं। बाकी जगह पर तो मेरे ख्याल से कोई यहां पर बैठा हो और किसी ने कभी इस तरह का प्रयास किया हो तो वो ही जानता है कि ये तीसरे प्रकार की शांति तो दिन भर में नहीं, कई दिनों में भी नहीं, कई वर्षों में एकाध बार हासिल होती है, लेकिन उसका मजा उसका आनंद कई कई दिन तक बना रखता है, मिलता कुछ भी नहीं है बल्कि गांठ से और चला जाता है ऐसी शांति पाने में। मजा देखो, कुछ नहीं मिला। पहली वाली शांति में तो भौतिक सुख सुविधाएं मिली थी, दूसरे वाले में जो दायित्व थे उनसे मैं निवृत्त हो गया था, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं हाथ आया बल्कि जो हाथ में था वो और चला गया। लेकिन ये जो शांति है ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा दिन तक रहती है। ये जब जब भी याद आ जाती है कि कैसा तो वो पड़ा था रास्ते में और कितना तो उसका ब्लड निकल गया था, और अगर उसको फर्स्ट एड नहीं मिलता तो वो तो मर ही जाता, लेकिन बच गया। और बचने के बाद कैसे वो मेरी आंखों में झांक के देख रहा था, कितनी उसके भीतर मेरे उपकार के प्रति कृतज्ञता थी। वो आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं। वो जब जब भी याद आ जाती है तो बड़ा सुख महसूस होता है। सारी झंझटों के बाद भी वो एक चीज है जो कि मुझे सहारा देती है, जो कि मुझे सारी अशांति के बीच भी शांत कर देती है। ये शांति जो थोड़ी जबरदस्त शांति है, ये हो सकता है कि पूरे जीवन भर रह सकती है। एक बार किए गए उपकार से मिलने वाली शांति संभव है कि पूरे जीवन रहे, और इतना भी नहीं, अगले जीवन में भी अगर संस्कार बन के चली जाए तो अगले जीवन में भी साथ चली जा सकती है। लेकिन इसके बाद भी मुझे अभी तलाश है उस अंतिम शाश्वत शांति की। मुझे इसमें भी अभी बार बार जन्म मरण करना पड़ता है। मैं तो उस शांति के तरफ बढ़ रहा हूं जिससे मुझे ये जन्म मरण का दुख ही ना हो, पर उस शांति तक पहुंचने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। पहले जो व्यक्ति अपने भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर अपने दायित्व से मुक्त होकर और परोपकार के लिए कुछ करना शुरू कर देता है, उसके जीवन में चौथे वाली शांति के आने के थोड़े थोड़े उपाय संभव हैं, वरना पहले और दूसरे प्रकार की शांति को पाकर के मरण को प्राप्त होने वाले शायद मेजॉरिटी में है लोग। अपनी भौतिक सुख सुविधाएं पूरी करके, अपनी लाइबिलिटीज पूरी करके और समाप्त। और इतने ही नहीं, अपने बच्चों को नहीं पालते, अपने बच्चों के बच्चों को भी पालने में लग जाते हैं, और उनके भी हो जाए तो बड़ा गौरव अनुभव करते हैं कि देखा, तीन पीढ़ी देख रहा हूं एक साथ। बस हम इसको ही शांति मानते हैं। हमारा अधिकांश लोगों का जीवन इन्हीं दोनों प्रकार की शांतियों को पाकर के नष्ट हो जाता है और फिर भी अशांत ही रहता है। तीसरे प्रकार की शांति पर थोड़ा सा और विचार कर लें, एक उदाहरण समझ लें, शायद याद रह जाए, और बस फिर बैठेंगे, फिर बात करेंगे। जीवन में बहुत मुश्किल है भैया अच्छाइयों पर विचार करना, इसलिए इन क्षणों को बहुत दुर्लभ मानिएगा। कोई बहुत पुराना संचित पुण्य है जो कि हमें थोड़ी सी समझ मिली है कि हम अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, कुछ प्रयास करने के लिए विचार कर रहे हैं। अभी प्रयास शुरू नहीं हुआ, उसके लिए बहुत प्रयत्न, बहुत पुण्य चाहिए जब हम कभी प्रयास कर सके। अभी तो सिर्फ विचार कर रहे हैं, और विचार भी क्या, अभी तो हम दूसरे के विचार सुन रहे हैं। कभी हम जब स्वयं विचार करने लगेंगे, स्वयं अनुभव करने लगेंगे, तब कोई चेंजेस आएंगे, वरना तो बहुत मुश्किल है। यहां उस काल में नहीं बैठे हैं जहां की क्षण भर में संसार से विरक्त होकर के अपना कल्याण करने वाले लोग हुआ करते थे। अब तो हम बार बार धर्मोपदेश सुन करके भी वैसे ही के वैसे अपनी टेक नहीं छोड़ने वाले लोग हैं। अपने जीवन को ज्यों का त्यों वैसा ही जीते रहते हैं। बस हमें तो कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उठा करके धीरे से हमें मोक्ष में बैठा देवे और हमें कुछ ना करना पड़े। नहीं, विदाउट एनी ओन एफर्ट वी डू नॉट गेन एनीथिंग। अपने ओन एफर्ट, अपने स्वयं के पुरुषार्थ के बिना कोई यहां कुछ नहीं पा सकता, ये ध्यान रखिएगा। हमें अगर शांति चाहिए है तो हमें तीसरे प्रकार की शांति के लिए भी कुछ प्रयास करना चाहिए। हम लोग वे लोग हैं, हम लोग उस परंपरा के लोग हैं जो कि अपनी जान की बाजी लगा करके दूसरे का उपकार करते थे, लेकिन आज आज ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां हमारा स्वार्थ है वहां हम सब कुछ करते हैं, निस्वार्थ प्रेम से भर करके किसी का उपकार करने के दिन अब लद गए हैं। पर फिर भी बहुत रेयर होने के बाद भी लोग हैं जो कि उपकार करते हैं, अपने जीवन पर सब कुछ सहन करके भी दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। और मजा यह है कि जब जब भी दूसरे का उपकार करने हम जाते हैं तो अपना पहले हो जाता है। आचार्य महाराज एक उदाहरण देते हैं कि जब जब किसान भावना भाता है कि पानी बरसे तो उसकी भावना से पानी बरसता है सबके खेत पर, लेकिन फसल सबकी खेत की नहीं काटता, अपने ही खेत की काटता है। सबके उपकार की भावना अगर भीतर है तो सबका उपकार तो होगा ही होगा, मेरा स्वयं का उपकार हुए बिना नहीं रहेगा। और जब जब मैं किसी और के अपकार की भावना भाता हूं, दूसरे का अपकार हो या ना हो, लेकिन मैं अपने अपकार की तैयारी अपने आप कर लेता हूं। ये बात बहुत भीतर से आनी चाहिए, सुनी सुनाई नहीं, सबने सुनी होगी, मैं भी आपको कोई नई बात नहीं सुना रहा हूं, लेकिन ये बात मेरे भीतर से क्यों नहीं आती, हम सबके भीतर से क्यों नहीं आती, क्यों नहीं ऐसा फील होता हमें। एक ऋषि हुए हैं मेतारी, वे भिक्षा के लिए जाते थे एक स्वर्णकार के यहां, उसके कहने पर ठहर जाते हैं कि आओ स्वामिन, मैं आपको भिक्षा दे सकता हूं। वे बैठ जाते हैं उस स्वर्णकार की दुकान पर, स्वर्णकार कहता है कि बैठो भगवान, मैं भिक्षा की सामग्री भीतर से लाता हूं। और स्वर्णकार क्या करता है, वो दाने बनाता है सोने के, राजा को हार बनवाना है उसके सोने के दाने बना रहा है, और दाने वहीं ड्रायर में रखे हुए हैं और वो उन्हें वैसा ही छोड़ करके, क्योंकि कोई तो नहीं है यहां पर, साधु बाबा जी हैं, वो सोचता है कि बहुत सेफ्टी है, यहां से कोई कुछ गायब थोड़ी होगा, और भीतर चला जाता है इस विश्वास से भर करके। जीवन का वैचित्र देखना, वो भीतर जाता है और उतने में एक पक्षी आकर के उन सोने के दानों को चने के दाने समझ करके जल्दी जल्दी निकल जाता है, 10-20 जितने भी उससे निकलते बनते हैं निकल जाता है। और महाराज मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, कुछ नहीं कहते। वो लौट के आता है तो सबसे पहले उसका ध्यान कहां जाता है, महाराज की तरफ, ना संभव ही नहीं, इतना पहुंचा हुआ तो कोई नहीं है, सबसे पहले जाता है उसका ध्यान सोने के दाने एज इट इज जैसे छोड़ के गया था वैसे ही है या नहीं है। अरे कम मालूम पड़ते हैं, भिक्षा हाथ में है, महाराज सामने है। अभी तक तो थोड़ी देर पहले मन में बड़ा उत्साह था भिक्षा देने का, अभी तक तो महाराज के चरणों में माथा टेकने का बहुत मन था, और अब सारा कंसंट्रेशन उन सोने के दाने पर है। पहले भी था पर दिखता नहीं था, प्रकट अब हो गया है। आशक्ति धार्मिक कार्य करते समय दिखाई नहीं पड़ती, जब धार्मिक कार्यों का फल मिलता है तब उसमें जो लोलुपता होती तब दिखाई पड़ती, ध्यान रखना। इसलिए कोई धार्मिक क्रियाएं दोहरा हो रहा हो तो ये नहीं समझ लेना कि बिल्कुल धार्मिक हो गया, बढ़िया आदमी हो गया, कोई जरूरी नहीं है। भीतर उतनी आशक्ति, उतनी ही कषायें, उतना ही सब कुछ पड़ा हो, हमारे अंदर कोई चेंजेस ही नहीं होते। हम बाहर से बहुत चेंजेस कर लेते हैं लेकिन भीतर हम ज्यों के त्यों बने रहते हैं। भिक्षा लाने गए थे, लेकर के भी आए हैं, देव ना दे क्यों नहीं रहे, नहीं सोने के दाने, उस पर तो मेरा जीवन टिका हुआ है, बाबा जी क्या दे देंगे, बाबा जी कुछ नहीं देंगे, उनके पास खुद भी नहीं है, खाने तक की तो उनको सुविधा नहीं है, मैं ही तो दे रहा हूं उनको खाने, ऐसा विचार आ गया उसके भीतर। और इतने नहीं, इसके बाद ये विचार आ गया कि गए कहां, यहां कोई तीसरा तो था नहीं, थर्ड पर्सन तो है नहीं, सिर्फ बाबा जी हैं। बाबा जी आपने सोने के दाने देखे, मैं यहां इतने दाने छोड़ के गया था, बाबा जी चुप हैं, देखे हैं ये भी नहीं कह रहे, नहीं देखे ये भी नहीं कह रहे, बड़ा मुश्किल है। बाबा जी बोलते क्यों नहीं आप? आपने देखे हो तो बता दो, नहीं देखे हो तो बता दो, कुछ नहीं बोलते। क्या करें आप? बाबा जी आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? आपको क्या हो गया? कौन ले गया? आप डर क्यों रहे हैं? बता दीजिएगा, जो भी ले गया तब भी कुछ नहीं बोल रहे। आओ बैठो, बड़ा मजा है इस संसार का। जिनके चरणों में कल तक माथा झुकाते थे, आज उन्हीं के माथे पर अपने चरण रखने का मन बन जाता है। यह है संसार की वास्तविकता, अगर देखना चाहते हैं तो खुली आंख से, विद अवेयरनेस, बहुत जागृति के साथ। और आवाज में तेजी आना शुरू होती चली जाती, बताते हैं कि नहीं बताते हैं? लाइए जरा कमंडल, मैं ही देखता हूं, उसी में तो नहीं डालनी है। लेकिन वहां कहां थे? सारी खाना तलाशी के बाद अब शब्द निकलना शुरू हो गए हैं, आसपास के लोग जुड़ गए हैं, बहुत हुजूम लग गया है, घेर लिया है बाबा जी को, हाथ भी उठ गया है बाबा जी के ऊपर। कल तक जिन्हें प्रणाम करने के लिए हाथ उठता था, आज उन्हीं के ऊपर हाथ उठ गया है। दुनिया में बहुत कठिन है कि हम निस्वार्थ होकर के उपकार कर सकें। उपकार का भाव भी क्षण भर को आता है, लेकिन तभी तक जब तक कि मेरे स्वार्थ की सिद्धि होती है, उसके बाद कोई उपकार नहीं है। भिक्षा देने में उपकार की भावना थी, लेकिन मेरे अम्यूजमेंट के साधन छिन जाएं तब मैं कोई उपकार पसंद नहीं करता। मेरे भौतिक सुख सुविधाओं के साधन मुझे ज्यों के त्यों बने रहें, बल्कि इनको भिक्षा देने से और ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा उपकार तो हम कई बार कर चुके हैं। मैं ऐसे उपकार से मिलने वाली शांति की चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना। मैं जिस निस्वार्थ उपकार से मिलने वाली शांति, जो तीसरी शांति है, जो कि बहुत लाइफ लॉन्ग है, बहुत दिन तक चलने वाली, उसकी बात कर रहा हूं। थोड़ा सा आगे बढ़े, वो क्या करता है? बाजू में चमड़े वाले की दुकान के पास से एक चमड़ा उठा करके उसे भिंगाता है। चमड़े की तासीर है कि भींग करके फैलता है, लेकिन सूख करके कड़ा होता चला जाता है। और साधु के गीला चमड़ा जोर से बांध देता है सिर में कि बुद्धि इनकी काम नहीं कर रही ना, अभी बताता हूं कैसे नहीं बोलेंगे। और बांध करके धूप में डाल देता है, हाथ पैर बांध करके, तब भी वे कुछ नहीं कहते। शाम घिरने को है, सारा दिन हो गया है, 12 बजे से 4 बज गए हैं, वे चुप हैं। लेकिन अचानक शाम होते ही सारे पक्षी उस वृक्ष के नीचे आकर के, वृक्ष के ऊपर आकर के इकट्ठे होते हैं, और पक्षी बीट करता है, उसके बीट में एक के बाद एक वे सोने के दाने वहीं नीचे गिरना शुरू होते हैं। दूर बैठा हुआ स्वर्णकार चकित है कि अरे बात ये है, सारे सोने के दाने। अब क्या करे, कहां जाए, किसको मुंह दिखाए, अब ऐसा लग रहा है। आंगन फांगन दौड़ करके जाता है, माथे से पट्टी छोड़ता है, चरणों में गिरता है, हाथ पैर जोड़ता है, माफी मांगता है, गलती हो गई, मैं इसको भी उपकार नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं भिक्षा देने को भी उपकार नहीं कह रहा था, और अब साधु के चरण छू रहा है, इसको भी उपकार नहीं मान रहा हूं, ध्यान रखना। क्योंकि सोने के दाने देख करके ये बात मन में आई है, पहले सोने के दाने नहीं दिखने से वो बात मन में आई थी, अब सोने के दाने दिखने के बाद मन में आई, ये भी कोई कृतज्ञता नहीं है, ये भी कोई उपकार नहीं है। वो कहता है कि महाराज पहले बता दिया होता, इतना बड़ा अपराध मेरे से हो गया, मैं नरक जाऊंगा, अपने नरक की चिंता उसे है,
उसने साधु के ऊपर जो कुछ भी किया है उसकी उसे बिल्कुल भी पीड़ा नहीं है, उसे अपने नरक जाने की पीड़ा है। आप जरा साइकोलॉजिकल एनालिसिस करना अपने जीवन का, ऐसा है हमारा जीवन, और हमें लगता है हम जैसे धार्मिक हो गए, जैसे हमने उपकार कर लिया हो, ऐसे तो हम बहुत उपकार करते हैं, ऐसे किसी उपकार की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिएगा, साधु से बहुत पूछने के बाद कहानी पूरी हो जाएगी, निश्चिंत रहिएगा, नमोकार भी करेंगे, पीछे से आवाज आ रही कि पानी आने लगा। उन्हें जो सुनाया जा रहा है उससे ज्यादा चिंता उस बात की है। सो डेफिनेट, इसमें कहीं कोई तर्क और कहीं कोई लॉजिक या कहीं कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अपने मन को खुद देखें हम गौर से, कौन भीग जाएगा, शरीर भीगेगा या मैं फिर भी नहीं भीगूंगा। शरीर भीग सकता है, पंडाल भीग सकता है, कपड़े भीग सकते हैं, मैं नहीं भीग सकता। अगर ऐसा भाव होता तो ये बात ही मन में नहीं आती। आप कितने लॉजिक दो कि नहीं, ऐसा कोई मन नहीं था मेरा, मैं तो इसलिए कह रहा था कि लोग भीग ना जाएं, मैं तो इसलिए कह रहा था कि पानी गिरने से महाराज रोक ना देवे, मैं तो सुनना चाह रहा था इसलिए कह रहा था मैं। नहीं, मेरे पास ऐसे बहुत से लॉजिक हैं, मेरे पास ऐसे बहुत से कंसोलेशन के साधन हैं, मैं सांत्वना दे लेता हूं कि मैं ऐसा थोड़ी सोच रहा था। लेकिन मेरे अपने भीतर अनकॉन्सियस में क्या क्या पड़ा हुआ है, मैं आपसे वो कह रहा हूं। जैसे अपन ने इसको एनालाइज किया उस छोटी सी घटना को, अब देखना मजा। वो पूछता है, गिड़गिड़ाता है, भगवान कुछ तो कह देते, आप बता देते कि पक्षी ले गया है, तो मैं काहे को आपको इतनी तकलीफ पहुंचाता। मेरा कोई मकसद नहीं था कि आपको तकलीफ पहुंचाऊं। तब वे ऋषि एक ही बात कहते हैं कि सुनो, यदि मैंने ये कह दिया होता कि पक्षी तुम्हारे दाने उठा के ले गया है, और अगर तुम उस पक्षी को कुछ करते तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, मुझ पे तुमने जो कुछ किया वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। मेरे जीवन में जो कुछ भी तुमने मुझे पीड़ा पहुंचाई है वो तो मेरे अपने कर्मों के उदय से है, लेकिन मैं अपनी उस पीड़ा से बचने के लिए किसी और दूसरे को पीड़ा में डालना नहीं चाहता। मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि क्या कभी हमारे मन में ऐसा भाव आता है, ऐसे ही उपकार करने का भाव आता है कि मैं अपने जीवन की सुख सुविधा के लिए किसी को तकलीफ में नहीं डालूं, मैं अपने छोटे छोटे से सुखों को जुटाने के लिए दूसरे को दुख में नहीं डालूंगा। क्या इस तरह का भाव हमारे भीतर आता है? आता है तो समझिएगा कि वो तीसरे प्रकार की शांति अब हमसे दूर नहीं है, हम उस तीसरे प्रकार की शांति को भी पालेंगे। और अगर वो हमें मिल गई, उपकार करने से मिलने वाली शांति अगर हमने पाली, तो हम अपने आत्मा का भी उपकार धीरे धीरे करके जो चौथे प्रकार की शांति है फिर बैठेंगे और उसको पाने का उपाय खोजेंगे और उसको पाकर के रहेंगे, इसी भावना के साथ कि हमें शाश्वत सुख और शाश्वत शांति मिले। मेरे साथ नमोकार करिएगा और भावना भाएं हम कि हमारे जीवन में वैसी ही शांति आवे। ओ
Oh. ॐ नमो अध्यायाणम् नमो लोये सौसाहूणम् चत्तारि मंगलम् अरिहंता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणम् पौवज्ञां अरिहंते शरणम् पौवज्ञां सिद्धे शरणम् पौवज्ञां साहु शरणम् पौवज्ञां केवली पन्नतम् धम्मम् शरणम् पौवज्ञां धम्मम् शरणम् पवज्जा
बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।